आठवां अध्याय कंबुज देश की सभ्यता और संस्कृति। पहला, शासन व्यवस्था। प्राचीन कंबोडिया या कंबुज देश का शासन राजतंत्र था और वहां वंशाक्रमानुगत राजाओं का शासन विद्यमान था। वहां उपलब्ध हुए अभिलेखों द्वारा गण राज्यों की सत्ता सूचित नहीं होती। जिन लोगों ने भारत से जाकर दक्षिण पूर्वी एशिया के इस देश में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, उनमें राजतंत्र शासन की परंपरा विद्यमान थी और उन्होंने अपने नए राज्यों में भी इसी शासन पद्धति का अनुसरण किया था। भारत के अनेक राज्यों में प्राचीन समय में राजा को दैवी माना जाता था और यह समझा जाता था कि या तो वह साक्षात देवता है और या इंद्र, मित्र, वरुण आदि विभिन्न देवताओं के अंशों से उसका निर्माण हुआ है। इसी मंतव्य का संकेत कंबुज के एक अभिलेख से भी मिलता है, जिसमें राजा जयवर्मा प्रथम को सहस्त्रोलिंगों शिवलिंगों के अंश को लेकर अवतीर्ण कहा गया है। यश्च लिंग सहस्त्राणाम तद्दम शेना वर्तिनेन जीतम श्री जयवर्मणा। जब राजा को सहस्त्रों शिवलिंगों के अंश को लेकर अवतीर्ण माना जाता है तो यह स्वाभाविक है कि ऐसे राजा की स्थिति राज्य में सर्वप्रधान हो और उसी द्वारा शासन सूत्र का संचालन किया जाए। पर राजा अकेला राज्य कार्य का संपादन नहीं कर सकता था, अतः उसकी सहायता के लिए मंत्रियों तथा अमात्य आदि अन्य राज पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। मंत्रियों के लिए यह आवश्यक समझा जाता था कि वे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में निष्णात हो। जयवर्मा प्रथम के कदेई अंग मंदिर अभिलेख में राजा भव वर्मा के दो मंत्रियों का उल्लेख है, जिनके नाम धर्मदेव और सिंहदेव थे। इनके गुणों का वर्णन करते हुए इन्हें धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का ज्ञाता कहा गया है। तस्य तो मत्रिणाम वास्तम सम्मतो कृत वेदिनौ धर्मशास्त्रात् शास्त्रज्ञो धर्मार्थवैव रूपिणौ। भारत के राजनीति संबंधी प्राचीन ग्रंथों में यह प्रतिपादित किया गया है कि मंत्रियों तथा अमात्यों आदि की नियुक्ति करते हुए विविध प्रकार की उपाधाओं परखों द्वारा उनकी परीक्षा करनी चाहिए और जो विविध उपाधाओं में खरे उतरे उन्हीं को इन उच्च राजकीय पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजा के लिए तो यह प्रतिदिन किया गया है कि उसे एक आदर्श व्यक्ति या राजश्री होना चाहिए। प्राचीन कंबुज देश में भी कुछ इसी प्रकार के विचार प्रचलित थे। वहाँ के अभिलेखों से इसी बात के संकेत मिलते हैं। राजा भव वर्मा की प्रशस्ति के रूप में उत्कीर्ण हनचेई मंदिर अभिलेख में इस राजा के एक राज पदाधिकारी का उल्लेख है, जिसे सर्वोपदा शुद्ध कहा गया है। महाराजाधिराजस्य तस्य श्री भव वर्मन मृतस्य सर्वोपदा शुद्ध रंतरंग तवामस्तिथ। कदई अंग मंदिर के अभिलेख में राजा जयवर्मा के अन्यतम राज पदाधिकारी सिंहदत्त, जो राजा द्वारा ढाईपुर के शासक पद पर नियुक्त था, के विषय में उत्कीर्ण निम्नलिखित श्लोक ध्यान देने योग्य हैं। यो भवत भवशन्य सत्त चितवृत त्रिवाधरिद बाल्येपि विनियोपेतो यौवनेपि जितेन्द्रिय त्रिवग्रारंभ कालेपि धर्मे यसत्वधिकादर। संसार में रहते हुए विचित्र वृत्तियों पर जिसने काबू पाया हुआ था, बाल्यावस्था में भी जिसने अपने को अनुशासित किया हुआ था, युवावस्था में भी जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हुई थी, त्रिवर्गारंभ के समय में भी धर्म के प्रति जिसका अत्यधिक आदर था, ऐसा वह आडपुर का शासक सिंहदत्त था। कंबुज के अनेक अभिलेखों में मंत्रियों तथा अन्य उच्च राज पदाधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठापित देव मूर्तियों आदि का उल्लेख है। ऐसे अभिलेखों में इन पदाधिकारियों के वंश, कुल तथा व्यक्तिगत गुण भी वर्णित है। ये गुण प्रायः वही हैं जो मनु, शुक, चाणक्य, कामंदक आदि भारतीय राजशास्त्र प्रणेताओं के अनुसार राजपुरुषों में होना चाहिए। अभिलेखों में अनेक वैद्य राज पदाधिकारियों का उल्लेख है, यथा मंत्री, कुमार मंत्री, राजकुल महामंत्री, राजभिषक, बलाध्यक्ष, पुरोहित, राज्य सभापति, नृपांत रंग द्वाराध्यक्ष, शयन गृह परीक्षक, नरेंद्र परिचारक, अन्नाधिपति और गुणदोष परीक्षक आदि। इनमें से कतिपय पदाधिकारियों की संज्ञाएं प्राचीन भारत के राज पदाधिकारियों के सदृश हैं। भारत में कुमारामत्य संज्ञक शासक होते थे, जिनका संबंध प्रायः राजकुल के साथ होता था। कंबुज में इनके सदृश कुमार मंत्री थे, राजकुल महामंत्री भी इसी वर्ग के उच्च पदाधिकारी थे। बलाध्यक्ष एवं सैनिक अधिकारी होता था। भारत में इसके सदृश सैनिक अधिकारी बलाध्यक्ष और बलाधिकृत कहते थे। द्वाराध्यक्ष कौटिल्य अर्थशास्त्र के दौवारिक के सदृश था और नृपांत रंग अंतर्वर्षिक के। राजतंत्र शासनों में बहुत से ऐसे राज कर्मचारी रखे जाते हैं जिनका कार्य राजा की रक्षा तथा अंतःपुर एवं राजप्रसाद की सुव्यवस्था करना हो। कौटिल्य अर्थशास्त्र में अंतर्वर्षिक और दौवारिक के अधीन अनेक ऐसे कर्मचारियों का उल्लेख है। कंबुज के अभिलेखों में जिन नरेंद्र परिचारक व सैन्य गृह परीक्षक आदि का वर्णन है वे ऐसे ही राज कर्मचारी थे। भारत के प्राचीन राज्यों में पुरोहित की स्थिति महत्व की होती थी। कंबुज के अभिलेखों से वहां भी पुरोहित के महत्व का संकेत मिलता है। बलाध्यक्ष के अतिरिक्त महाशौपति संज्ञक एक अन्य सैनिक अधिकारी होता था। अश्वारोही सेना जिसके अधीन थी। अन्य सैनिक अधिकारी सामंत, नौवाह, नौसेना या जलसेना का अध्यक्ष, सहस्त्र वर्गधिपति आदि होते थे। छोटे राज कर्मचारियों की जो संज्ञाएं अभिलेखों में आई हैं उनमें राजकुटीपाल, पुस्तक रक्षक, पत्रकारक, लेखक और राजद्रोही आदि उल्लेखनीय हैं। राजा जयवर्मा प्रथम के तुओल प्रथत शिलालेख में उसके एक राज पदाधिकारी द्वारा एक शिवलिंग के प्रतिष्ठापित किए जाने का वर्णन है और इस पदाधिकारी को राजसभाधिपति कहा गया है। स्वामिनः प्रसादतो सच राजसभाधिपत्य कृतनामा। इससे यह संकेत मिलता है कि कंबुज देश के शासन में एक राजसभा की भी सत्ता थी और श्री केदारेश्वर शिवलिंग को प्रतिष्ठापित कराने वाला राजपदाधिकारी इसी राजसभा का अधिपति या अध्यक्ष था। राजसभा के सभापदों का उल्लेख राजा जयवीर वर्मा के तुओल प्रसत अभिलेख में विद्यमान है। वहां लिखा है कि राजा की आज्ञा से जो कर्मचारी नियुक्त किए गए थे उन द्वारा किए गए दुष्कृत्यों को लिपिबद्ध करके राजा जयवर्मा के समक्ष निवेदन किया गया था और राजा ने मंत्रियों और सभासदों के साथ उनकी सम्यक रूप से समीक्षा की थी। अभिलेख के वाक्य इस प्रकार है। सहदेवेन तन्न पत्रा तेषां तदत् दुष्कृतम कृतम लिपिभिनी वेदित सरसव राज्ञी श्री जयवर्मणि मंत्रिभिस्स सभा सिद्ध राज्ञा सम्यक समीक्षितम। राज्यसभा के इन सभासदों की नियुक्ति किसी प्रकार के चुनाव द्वारा होती थी। यह कल्पना तो सर्वथा असंगत होगी पर इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन भारतीय राज्यों की सभाओं के समान कंबुज की राज्यसभा में भी देश के विद्वान एवं प्रमुख कुलों के मुख्य सभासद हुआ करते थे और राजा उनसे भी परामर्श किया करता था। कंबुज राज अत्यंत विस्तृत था और उसके प्रतापी राजाओं ने समीप के अनेक देशों को जीतकर उन्हें भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। अतः यह स्वाभाविक था कि इस सुविस्तृत राज्य को शासन की सुविधा के लिए अनेक प्रांतों में विभक्त किया जाए। चीनी ग्रंथों के अनुसार इन प्रांतों की संख्या 30 थी। कंबुज के अभिलेखों में अनेक प्रांतों का उल्लेख मिलता है यथा ताम्रपुर, आढ़्यपुर, तदत्रपुर, श्रेष्ठपुत्र, भवपुर, ध्रुवपुर, ध्वनिपुर, धर्मपुर, ज्येष्ठपुत्र, उग्रपुर, विक्रमपुर और ईशानपुर। संभवतः ये प्रांत भी आकार में अच्छे बड़े थे क्योंकि इनके क्षेत्र में एक से अधिक नगरों की सत्ता थी। राजा ईशान वर्मा के समय के बाद चकेत मंदिर में उत्कीर्ण एक अभिलेख में ताम्रपुर के शासक ताम्रपुरेश्वर द्वारा प्रतिष्ठापित हरिशंकरों का उल्लेख है। इसी अभिलेख में ताम्रपुर के इस शासक को चकांग, अमोघ और भीम नाम के तीन अन्य पुरों का भी स्वामी कहा गया है। ताम्रपुर के इस शासक की नियुक्ति राजा ईशान वर्मा द्वारा की गई थी पर कतिपय प्रांतीय शासक वंश क्रमानुगत भी होते थे पर इन शासकों की नियुक्ति भी राजा द्वारा ही की जाती थी और उन्हें नियुक्त करते समय यह ध्यान में रखा जाता था कि वे शासन कार्य के योग्य हैं। आढ़्यपुर के प्रांतीय शासक की नियुक्ति के संबंध में एक अभिलेख के ये शब्द महत्व के हैं। पश्चादाढ़्यपुराशस्य योध्यक्षे त्वे कुलक्रमात् योग्यो इमितः संस्थितः स्वयं राज्ञ नियोजितः। यद्यपि आढ़्यपुर का शासन कुलक्रम से चला आ रहा था पर योग्यता को दृष्टि में रख कर राजा ने स्वयं उसे इस पद पर अधिष्ठित किया था। प्रांतीय शासक की संज्ञा भी अध्यक्ष होती थी, यह भी इस श्लोक में सूचित होता है। कंबुज राज्य में न्याय व्यवस्था का क्या स्वरूप था इस विषय में भी अभिलेखों द्वारा कतिपय महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। संभवतः प्रधान न्यायाधीश की संज्ञा धर्माधिपति होती थी और उसके अधीन व्यवहाराधिकारी और धर्माधिकारण पाल सदृश विविध पदाधिकारी कार्य करते थे। एक अभिलेख में जहां मुकदमे के निर्णय का विशद रूप से उल्लेख है, वहां साथ ही उस मुकदमे से संबंध व्यक्तियों के नाम भी दिए गए हैं। ये नाम हैं न्यायाधीश कम स्तेन अन श्री भूपति वर्मा, सहायक न्यायाधीश लोनी पित्रानंदन लोनई, लोन आनंदन और लोन पंडिताचार्य, गवाह मृतन श्री धर्नेन्द्र कल्प और स्तेन अन। कंबुज देश से उपलब्ध हुए कितने ही अभिलेखों में न्यायालयों के सम्मुख प्रस्तुत मुकदमों तथा उनके निर्णयों का वर्णन विद्यमान है, जिनसे सूचित होता है कि वहां न्याय व्यवस्था अच्छी समुन्नत दशा में थी। राजा जयवीर वर्मा के प्रशत त्रपन अभिलेख द्वारा कंबुज राज्य की भूमि व्यवस्था तथा स्थानीय शासन के संबंध में अच्छा प्रकाश पड़ता है। यह अभिलेख संस्कृत और खमेर दोनों भाषाओं में है और इसमें जयवीर वर्मा द्वारा श्री कवेंद्र पंडित को दान में दिए गए एक ऐसे भूखंड का उल्लेख है जिसका उपयोग वह भगवान नारायण के निमित्त से करना चाहता था। राजा ने स्थानीय राज कर्मचारियों की सहायता से इस भूखंड की सीमाओं को निर्धारित कराया और फिर इसे श्री कवेंद्र पंडित को प्रदान कर दिया। इस प्रसंग में जिन राज कर्मचारियों का उल्लेख आया है वे निम्नलिखित हैं: शुभ मुहूर्त को निर्धारित करने वाला 10 ग्राम, 10 ग्रामों का अध्यक्ष या मुखिया, प्रधान ग्राम का प्रधान, ग्रामबद्ध ग्राम के विविध कुलों के मुखिया और दास, कौटिल्य अर्थशास्त्र आदि प्राचीन भारतीय राजनीतिक विषय ग्रंथों में भी ग्रामों के शासन के संबंध में प्रायः इन्हीं राज कर्मचारियों का उल्लेख मिलता है, जिससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि कंबुज देश में भी ग्रामों के शासन का प्रायः वही रूप था जो कि प्राचीन भारत में था। कंबुज देश के अभिलेखों द्वारा जहां राज्य के बहुत से पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के विषय में परिचय मिलता है, वहां साथ ही उनसे यह भी ज्ञात होता है कि उन्हें नियुक्त करते हुए किन बातों को ध्यान में रखा जाता था। बड़े राज्य पदाधिकारी प्रायः राजकुल से संबंध हुआ करते थे, इसी कारण उनके लिए राजकुल महामंत्री और कुमार मंत्री सदृश संज्ञाएं प्रयुक्त की जाती थीं। अन्य उच्च पदाधिकारी भी प्रायः वंशाक्रमानुगत हुआ करते थे। राजा जयवर्मा द्वितीय ने शिव कैवल्य नामक ब्राह्मण को अपना राजपुरोहित नियुक्त किया था। उसके बाद 250 वर्ष के लगभग तक शिव कैवल्य के वंशज या उनके निकट संबंधी कंबुज राजाओं के पुरोहित पद पर रहे। जयवर्मा प्रथम के तन कर्ण अभिलेख में धर्म स्वामी नामक एक वेद वेदांग पारंगत ब्राह्मण का उल्लेख है जो धर्मपुर का शासक था। उसके ज्येष्ठ पुत्र का नाम अभिलेखों में नहीं दिया गया, पर उसके संबंध में यह लिखा गया है कि पहले उसे महाशवपति के पद पर नियुक्त किया गया था, फिर उसे श्रेष्ठपुर का शासन दिया गया और वहां से उसे ध्रुवपुर का शासक बनाकर भेज दिया गया। धर्म स्वामी के छोटे पुत्र का नाम प्रचंड सिंह था, वह भी एक उच्च राज पदाधिकारी था। सबसे पूर्व उसकी नियुक्ति सिरस्त्राणधारी और शस्त्र पणि नृपांत रंग योद्धाओं के अध्यक्ष के रूप में हुई थी। राजा की रक्षा के प्रयोजन से जो शिरस्त्राण धारण करने वाले और हाथों में शस्त्र लिए हुए अंतरंग सैनिक प्रचंड सिंह को उनका अध्यक्ष नियत किया गया था। बाद में इस वीर पुरुष की सामंत नौवाह जल सेनाध्यक्ष के पद पर और फिर धनीपुर के सहस्त्र वर्गाधिपति के पद पर नियुक्त की गई थी। चीनी लेखकों ने कंबुज राज के विषय में लिखा है कि वहां प्रायः उच्च राज्य पदाधिकारी राजवंश के होते हैं और पुरुषों के न होने पर स्त्रियां उनके पदों पर नियुक्त की जाती हैं। चीनी ग्रंथों में कंबुज राजाओं के वैभव का वर्णन मिलता है। 7वीं सदी की एक चीनी पुस्तक में कंबुज राज ईशान वर्मा के विषय में लिखा है कि वह सप्तरत्न मंडित व पंच गंध से सुगंधित आसन पर बैठता है, गजदंत तथा स्वर्ण पुष्पों द्वारा मंडित बहुमूल्य दारू स्तंभों पर तना चंदवा उसके ऊपर होता है, सिंहासन के दोनों ओर एक एक आदमी धूपदानी के लिए रहता है, राजा गोटेदार श्वेत रेशमी वस्त्र पहनता है, बहुमूल्य मणियों और मोतियों से अलंकृत मुकुट धारण करता है और उसके कानों में स्त्रियों की भांति सोने के कुंडल होते हैं। प्रजा का हित एवं सुख प्रतिपादित करना कंबुज के राजा अपना परम कर्तव्य मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने राज्य के अनेक लोक हितकारी कार्यों की व्यवस्था की थी। राजा जयवर्मा सप्तम ने जिन बहुत से आरोग्य मंदिरों तथा आरोग्य शालाओं की स्थापना की थी और उनका खर्च चलाने के लिए जो संपत्ति उन्हें प्रदान की थी उसका उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है। इन राजाओं ने मंदिरों, विहारों, मठों और आश्रमों की स्थापना के लिए जो दान पुण्य किए थे उनके विषय में हम इसी अध्याय में पृथक रूप से लिखेंगे। केवल राजा ही नहीं अपितु उनके उच्च राज पदाधिकारी भी शासन का कार्य करते हुए प्रजा के हित को दृष्टि में रखा करते थे। आर्यपुर के शासक सिंहदत्त के विषय में एक अभिलेख में लिखा है कि वह दूसरे के लिए अभिजय के लिए सदा प्रयत्नशील रहता था। रोग पीड़ितों और याचकों के करुण वचनों को सुनकर उसके हृदय में करुणा का सागर उमड़ पड़ता था और कर आदि द्वारा वह जो कुछ प्राप्त करता था उसे वह कुटुंबियों के लिए ही प्रयुक्त कर देता था। कंबुज देश के राजाओं के सम्मुख प्राचीन भारतीय राजाओं का आदर्श सदा उपस्थित रहता था और वे अपने को उन्हीं के मार्ग का पथिक समझा करते थे। इसीलिए जयवर्मा प्रथम के समय ने कदई अंग मंदिर शिलालेख में राजा रुद्रवर्मा के शासन को दिलीप के समान प्रसिद्ध कहा है। राजा श्री रुद्रवर्मा सित त्रिविक्रमा पराक्रम यस्य स्वराज्यस्य मध्यपि दिलीपस्येव सुविश्रुतम्। दूसरा, सामाजिक जीवन। कंबुज देश से उपलब्ध हुए अभिलेखों से समाज का जो रूप स्वरूप हमारे सम्मुख उपस्थित होता है उसका आधार चातुर्वर्ण्य है। जयवर्मा सप्तम से फुंग अभिलेख में चार वर्णों का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। चिकित्सया अत्र चतवारो वर्णा दौ भीषजौ तयो। भारत के समान कंबुज देश में भी चार वर्णों की सत्ता थी जिनमें ब्राह्मण वर्ण का स्थान सर्वोपरि था। जिन भारतीयों ने इस सुदूर देश में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे वे प्रायः ब्राह्मण वर्ण के ही थे। कंबुज की प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने वहां जाकर अपना राज स्थापित किया था और वहां के मूल निवासियों की रानी के साथ विवाह किया था। यह अनुश्रुति इस तथ्य को प्रकट करती है कि जिन भारतीयों ने कंबुज देश में अपने उपनिवेश बसाए थे वे ब्राह्मण वर्ण के थे। उस समय कंबुज के मूल निवासी प्रायः असभ्य व जंगली थे। भारतीयों के संपर्क में आकर उन्होंने सभ्यता एवं संस्कृति के क्षेत्र में उन्नति की और भारत के ही धर्म, आचरण, संस्कृति आदि को अपना लिया। भारत से जाकर जो ब्राह्मण कंबुज देश में बसे थे उन्होंने वहां की स्त्रियों से विवाह किया और इन विवाहों से जो संतान उत्पन्न हुई जातीय दृष्टि से वह वर्ण संकर थी, पर क्योंकि उसने अपने पिता की संस्कृति, भाषा, धर्म आदि को अपना लिया था अतः उसे भी ब्राह्मण माना जाने लगा था। कंबुज की प्राचीन अनुश्रुति की पुष्टि चीनी इतिवृत्त द्वारा भी होती है। एक चीनी ग्रंथ के अनुसार तुअब सियन नगरी हुनान के राज्य क्षेत्र में 1000 से भी अधिक ब्राह्मणों का निवास था और उन्होंने वहाँ के मूल निवासियों की कन्याओं के साथ अपना विवाह किया हुआ था। भारतीय उपनिवेशकों की एक अन्य मंडली 4वीं सदी के अंत व 5वीं सदी के प्रारंभ काल में कंबुज गई थी। उसने नेता को भी कौंडिन्य ब्राह्मण कहा गया है, जिससे सूचित होता है कि भारतीय उपनिवेशकों के इस दूसरे दल के लोग भी जाति से प्रायः ब्राह्मण ही थे। बाद में भी अनेक ब्राह्मण भारत से जाकर कंबुज में बसते रहे और वहाँ के राजाओं द्वारा उन्होंने सम्मान प्राप्त किया। राजा जयवर्मा द्वितीय के समय और हिरण्यदामा नामक ब्राह्मण भारत से कंबुज गया था। वह तंत्र मंत्र में प्रवीण था और उसने राजा के लिए एक ऐसा विधान पुरुषचरण तैयार किया था जिससे कंबुज यवदीप के अधीन न रहे और जयवर्मा अपने देश में स्वतंत्र चक्रवर्ती की स्थिति प्राप्त कर सके। भारद्वाज गोत्र के ऋषिकेश नामक ब्राह्मण पंडित राजा जयवर्मा सप्तम के समय में कंबुज गए थे। राजा ने उन्हें श्री जय महाप्रधान की उपाधि से सम्मानित किया और अपना राजपुरोहित नियुक्त किया। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि कंबुज के समाज में ब्राह्मणों का स्थान अत्यंत महत्व का था। संभवतः वहाँ के भारत मूलक निवासियों में बहुसंख्या भी ब्राह्मणों की ही थी। ब्राह्मणों के समान ही क्षत्रिय वर्ण का भी कंबुज देश में के समाज में उच्च स्थान था। वहाँ के राजकुल प्रायः क्षत्रिय वर्ण के थे। संभवतः क्षत्रिय लोग भी ब्राह्मणों के साथ साथ अच्छी बड़ी संख्या में भारत से जाकर कंबुज देश में बस गए थे। यह भी संभव है कि वहाँ के निवासियों में जो उच्च कुलों के लोग थे और जिन्होंने भारत के धर्म, संस्कृति आदि को अपना लिया था उन्हें भी क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत माना लिया गया था। यवन, शक आदि जिन जातियों ने भारत पर आक्रमण कर इस देश में अपने राज्य स्थापित किए थे, बाद में उन्हें भी क्षत्रिय वर्ण में सम्मिलित कर लिया गया था, क्योंकि भारत के संपर्क में आकर संस्कृति की दृष्टि से वे भारतीय बन गए थे। संभवतः यही प्रक्रिया कंबुज देश में भी हुई थी। कंबुज के अभिलेखों में कतिपय राजाओं या उनकी रानियों को छत्रावनयन, क्षत्रिय वंश या कुल में उत्पन्न कहा गया है, तो दूसरों को ब्रह्मा, क्षत्राव भाव, ब्राह्मण और क्षत्रिय के अंश से उत्पन्न बताया गया है। राजा इंद्रवर्मा के प्रह को अभिलेख में श्री पृथ्वी नंद वर्मा को क्षत्रिय कुल का पत्नी श्री पृथ्वी नंद वर्म निपते छत्रा नवया प्रोदकते और लोभेक स्रोत अभिलेख से राजा जय वर्मा को ब्रह्म छत्र कुल का कहा गया है। श्री जय वर्मणि निपतो शासितो पृथ्वीम समुद्र पर्यताम ब्रह्म छत्रांस स्वभवे नतरणी प्रविता सीतरी नित्यम। कंबुज देश में ब्राह्मणों और क्षत्रियों में परस्पर विवाह संबंध होना बहुत प्रचलित था। न केवल ब्राह्मण क्षत्रिय कन्याओं से विवाह करते थे, अपितु क्षत्रिय पुरुष ब्राह्मण कन्याओं से भी विवाह संबंध स्थापित किया करते थे। इस प्रकार वहां एक संकर जाति विकसित हो गई थी जिसे ब्राह्मण छत्र कहा जाता था। कंबुज अभिलेख में वैश्यों का भी उल्लेख विद्यमान है। यशो वर्मा के प्रसत कोमनप अभिलेख में वैश्यों का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है। इहस्था वैष्णवा सर्वे नाध्यचे वैश्यताम गता। भारत से जाकर जो उपनिवेशक दक्षिण पूर्वी एशिया के इन प्रदेशों में आबाद हुए थे, उनमें वैश्य भी अवश्य रहे होंगे, यह अनुमान करना सर्वथा समुचित है। हमें ज्ञात है कि भारत के व्यापारी स्थल और जलमार्ग से दूर दूर के देशों में व्यापार के लिए जाया आया करते थे। स्वर्णद्वीप या स्वर्ण भूमि के प्रसंग में ऐसे व्यापारियों का उल्लेख इस ग्रंथ में पहले भी किया जा चुका है। यह सर्वथा संभव है कि ऐसे बहुत से व्यापारी इन देशों में स्थायी रूप से बस भी गए हों और वे वैश्य भी वहां की समाज के अन्यतम अंग बन गए हों। कंबुज के अभिलेखों में उनका पृथक रूप से जो उल्लेख नहीं हुआ है, उसका कारण शायद यह है कि ये अभिलेख प्रायः वहां के राजाओं, राजपुरोहितों एवं उच्च राजपदाधिकारियों द्वारा अपने दान पुण्य के प्रसंग में उत्कीर्ण कराए गए हैं। कंबुज के समाज में शूद्रों की भी सत्ता थी, जिनकी स्थिति दासों के सदृश थी। वहां के अभिलेखों तथा चीनी विवरणों से इन दासों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। कंबुज के राजा अपने देश के समान समाज संगठन को भारत के चातुर्वर्ण्य पर आधारित समाज के अनुरूप बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। प्रसत्त केव अभिलेख में राजा सूर्य वर्मा के विषय में यह कहा गया है कि उसने अपने राज्य में वर्ण भाग, वर्ण व्यवस्था का स्थापना किया था और शिवाचार्य नामक विद्वान को श्रेष्ठ तत्व की स्थिति प्रदान की थी। श्री सूर्य वर्मणो राज्य वर्ण भागे कृतेपि यह संपदम प्राप्य सद्भक्तया वर्ण श्रेष्ठव संस्थित। पर अपने देश की विशिष्ट परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर वे समाज को एक नया रूप देने में भी संकोच नहीं करते थे। राजा जयवर्मा पंचम ने दो नए वर्णों का निर्माण किया जिन्हें खमुक और कर्मांतर कहते थे। इन वर्णों के जो व्यक्ति विद्याशील और आचार में श्रेष्ठ हों, उन्हें आचार्य, चतुराचार्य, प्रधान सदृश महत्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्त किया जा सकता था। इन दो नए वर्णों के विशिष्ट कार्य क्या थे, यह स्पष्ट नहीं है। वर्ण का आधार कर्म न होकर जन्म था। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण ही होता था, चाहे वह कोई भी व्यवसाय व कार्य करता हो। राजा हर्ष वर्मा तृतीय के पलहल तेल अभिलेख से सूचित होता है कि कंबुज देश के ब्राह्मण कुलों के व्यक्ति कतिपय ऐसे कार्य भी करते थे जिनका ब्राह्मणों से कोई संबंध नहीं। ऐसे जिन कार्यों का इस अभिलेख में वर्णन है, उनमें हाथी के महावत, हस्तिप का काम, शिल्पी का काम तथा गणिका का कार्य उल्लेखनीय है। इन कार्यों को करने वालों को भी ब्राह्मण ही माना जाता था यदि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ हो। विवाह संबंध। कंबुज देश के समाज में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का स्थान सर्वोच्च था और इन वर्णों में परस्पर विवाह संबंध हो सकता था। यद्यपि ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या से विवाह कर सकता था, पर ब्राह्मण कन्या का विवाह अपने वर्ण से बाहर प्रायः केवल राजकुल के पुरुष से ही होता था, साधारण क्षत्रिय कुल के पुरुष से नहीं। राजा भाव वर्मा प्रथम के एक अभिलेख में सोम वेद विद अग्रणी श्री सोम शर्मा नामक ब्राह्मण के भाव वर्मा की बहन के साथ विवाह का उल्लेख है। सोम शर्मा की इस पत्नी को अभिलेख में पतिव्रता तथा धर्मरता कहा गया है और उसकी उपमा अरुंधति के साथ दी गई है। राजा जयवर्मा द्वितीय ने भास्य स्वामिनी नाम की एक कुमारी के साथ विवाह किया था जो कि आमल कस्थल की निवासी द्विज विष्णु की कन्या थी। इनकी पौत्री का नाम सत्यवती था जिसने कि भानुवर नामर एक ब्राह्मण के साथ विवाह किया था। इसी विवाह से उस प्रसिद्ध श्री योगेश्वर पंडित का जन्म हुआ जिसने कि व्याधपुर में शिव और विष्णु के अनेक मंदिरों का निर्माण कराया और उनके लिए प्रभुत मात्रा में दान दक्षिणा प्रदान की थी। राजा जयवर्मा सप्तम की दोनों रानियां जयराज देवी और इंद्र देवी ब्राह्मण कन्याएं थी। इनकी माता का नाम राजेंद्र लक्ष्मी था जिसके लिए अभिलेख में विप्र विशेषण का प्रयोग किया गया है। राजा श्री नंद वर्मा के अंगकोर मंदिर में उत्कीर्ण एक अभिलेख में नरपति देश संभवतः वर्मा से आकर कंबुज में बसे हुए एक ब्राह्मण का वर्णन है जो भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुआ था। इस ब्राह्मण का नाम ऋषिकेश था। कंबुज देश में वेदों का बहुत सम्मान है और वहां बहुत से वेदा विद्या कोविद विद्वानों का निवास है। यह सुनकर वह कंबुज आए और वहां राजा जयवर्मा सप्तम ने उन्हें श्री जय महाप्रधान की उपाधि से विभूषित किया। 1165 में वे भीमपुर की शिवालय की यात्रा व दर्शन के लिए गए जहां उन्होंने शैव कुल में उत्पन्न एक कन्या के साथ विवाह किया जिसका नाम श्री प्रभा था। इस पत्नी से 4 पुत्र और 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। श्री प्रभा की द्वितीय पुत्री का विवाह राजा जयवर्मा अष्टम के साथ हुआ और विवाह के समय उसे श्री चक्रवर्ती राजा दिदेव की उपाधि से विभूषित किया गया। उसकी बहन का नाम सुभद्रा था जिसका विवाह अध्यापकाधीप मंगलार्थ के साथ हुआ। 2 बहनों में से एक का क्षत्रिय राजा से विवाह हुआ था और दूसरी का ब्राह्मण पंडित से। राजा यशो वर्मा 889 से 909 की मतामही वेदा रिंग पंडित अगस्त ब्राह्मण के वंश की थी। ये उदाहरण यह प्रतिपादित करने के लिए पर्याप्त है कि कंबुज देश में राजकुलों के क्षत्रिय और ब्राह्मणों में विवाह संबंध भलीभांति प्रचलित था। कंबुज देश में विवाह संस्था का क्या स्वरूप था इस विषय में कतिपय संकेत अभिलेखों में पाए जाते हैं जो महत्व के हैं। संभवतः छोटी जातियों या दास वर्ग के लोगों में बहुपति विवाह की प्रथा भी विद्यमान थी। राजा ईशान वर्मा के वट सबब अभिलेख में उस दान दक्षिणा का उल्लेख है जो मात्रांग अणंग नामक राजपदाधिकारी द्वारा देवता के प्रयोजन से प्रदान की गई थी। इसके निम्न वाक्य उद्धरण के योग्य हैं। त्रीन सदा द्वादश चैव किंग रगनाण भार्यास्तद दिया नव द्वाविशम चच्च गवय शत दियमिदम पंचोचरम महिषम अर्धाशीत यूतम शतदय। इन पंक्तियों में दान दक्षिणा में प्रदान किए गए 42 किंकरों नौकरों या दासों और उनकी 9 भार्यायों पत्नियों 222 गांवों तथा 245 भैंसों का उल्लेख है। ध्यान देने योग्य बात है कि 42 किंकरों की केवल 9 पत्नियां थी जिससे बहुपति विवाह की पद्धति का संकेत मिलता है। विधवा विवाह का उल्लेख भी एक अभिलेख में है। राजा सूर्य वर्मा द्वितीय के फनोम रून अभिलेख के अनुसार सूर्य वर्मा के पूर्वज हिरण्य वर्मा के 3 पुत्र थे जिनमें से सबसे छोटे को युवराज कहते हैं। उसका विवाह विजेंद्र लक्ष्मी के साथ हुआ था। युवराज की मृत्यु हो जाने पर विजेंद्र लक्ष्मी ने हिरण्य वर्मा के द्वितीय पुत्र जय वर्मा षष्ठ के साथ विवाह किया और जब उसकी मृत्यु हो गई तो हिरण्य वर्मा के सबसे बड़े पुत्र धर्णेन्द्र देव के साथ राजकुल में विधवा विवाह की सत्ता का यह स्पष्ट विवरण महत्व का है। राजा ईशान वर्मा 7वीं सदी के समय के चीनी विवरणों से कंबुज देश में प्रचलित विवाह के रीति रिवाजों पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है। उनके अनुसार विवाह में कन्या के पास केवल 1 परिधान भेंट के रूप में भेजा जाता है। विवाह की तिथि निश्चित हो जाने पर घटक वधू के पास जाता है। वर वधू के परिवार सप्ताह भर बाहर नहीं निकलते, रात दिन दीपक जलता रहता है। विवाह संस्कार हो जाने पर पति परिवार की संपत्ति में से अपना भाग लेकर पृथक घर में रहने लगता है, रहन सहन भोजन आदि। 13वीं सदी में सू ताकुवान नामक चीनी यात्री कंबुज देश आया था। उसने जो यात्रा वृतांत लिखा है उसमें 13वीं सदी के कंबुज देश के रहन सहन आचार विचार सामाजिक जीवन आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। उसने लिखा है कि पुरुष और स्त्री दोनों सिर पर अपने केशों का जूड़ा बांधते हैं, वे केवल एक लुंगी पहनते हैं पर बाहर जाने पर एक चादर भी ले लेते हैं। उनके सबसे अच्छे तथा बारीक कपड़े पश्चिमी समुद्र भारत से आते हैं। राजा बड़े बड़े मोतियों की एक माला और हाथ पैर में रत्न जटित कट कंकन पहनता है। वह नंगे पैर चलता है और उसके हाथ पैर महावर से रंगे रहते हैं। जन साधारण में स्त्रियां ही अपने हाथ पैरों को रंगती हैं। लोग मोटे और बहुत काले होते हैं। गोरा रंग राजमहल के लोगों या कुलीन परिवारों की स्त्रियों में ही पाया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों साधारणतया शरीर के ऊपरी भाग को नंगा रखते हैं, बालों को जूड़े के रूप में बांधते हैं और नंगे पैर घूमते हैं। रानियां भी इसी तरह रहती हैं। एक अन्य चीनी ग्रंथ में कंबुज के विषय में लिखा गया है कि वहां के आदमी कद में छोटे तथा काले रंग के होते हैं, लेकिन स्त्रियों में कोई कोई साफ रंग की भी होती है। लोग अपने बालों का जड़ा बांधते हैं और कानों में कुंडल पहनते हैं। वे दृढ़ और कर्मठ होते हैं। उनके घर और घर के समान सियाम जैसे होते हैं। वे दाएं हाथ को शुद्ध और बाएं हाथ को अशुद्ध समझते हैं। वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करते हैं और वृक्ष की लकड़ी से दांत साफ करते हैं। पोथी पढ़ने के बाद वे प्रार्थना करते हैं, फिर स्नान करते हैं और उसके बाद भोजन करते हैं। भोजन के बाद वे फिर दांत धोते हैं और एक बार और प्रार्थना करते हैं। अपने भोजन के लिए वे घी, मलाई, चीनी, चावल और बाजरा, जिसकी वे रोटी बनाते हैं, का प्रयोग करते हैं। मृतक के संबंध में चीनी ग्रंथों का यह विवरण महत्व का है कि वे सूतक मानते हैं। बिना भोजन किए और बिना बाल कटाए 7 दिन तक स्त्री पुरुष रोते बिलखते रहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मण पुरोहितों के साथ संबंधियों के एकत्र हो जाने पर वे बाजे के साथ जुलूस निकालते हैं। सुगंधित लकड़ी की चिता पर शव को भस्म कर दिया जाता है और चिता की राख को सोने या चांदी के डिबिया में रखकर नदी में फेंक देते हैं। गरीब लोग इस काम के लिए मिट्टी की डिबिया को प्रयुक्त करते हैं, जो नाना प्रकार से चित्रित एवं अलंकृत हुई होती है। कभी कभी जीवों के खाने के लिए शव को पहाड़ पर भी रख दिया जाता है। कंबुज के घरों के विषय में चीनी ग्रंथों में लिखा है कि इस देश में सभी घर पूर्वाभिमुख होते हैं। लोग बैठते भी पूर्व की ओर मुख करके हैं। अतिथि के सत्कार में सुपारी, कपूर तथा सुगंध प्रदान करने की प्रथा है। प्रगट में वहां कोई शराब नहीं पीता, पर जब परिवार के बड़े न हो तो पति पत्नी घर के भीतर शराब पीते हैं। चीनी विवरणों में कंबुज देश के निवासियों के परिधान के विषय में जो लिखा गया है, उसकी पुष्टि अंकोरवाद में अंकित चित्रों द्वारा भी होती है। अंकोरवाद की रूपावलियों में पुरुषों तथा स्त्रियों के जो बहुत से चित्र हैं, उनमें उन्हें धोती पहने हुए दिखाया गया है। धोती को कमर के चारों ओर बांधा जाता था और उसमें चुन्नटें भी होती थी। दुपट्टा या उतरिया कंधों पर ओढ़ा जाता था और जो सिर पर ऊंची मौली मुकुट रहती थी। बायोन के मंदिर की भीतियों पर जो चित्र अंकित हैं, उनमें कहीं दाढ़ी वाले ब्राह्मण यज्ञो पवित्र पहनकर वृक्ष की छाया में बैठे हैं और कहीं राजा केवल एक धोती पहने और गले में एक हार डाले बैठा है। धोती, दुपट्टा आदि के लिए सूती और रेशमी दोनों प्रकार के कपड़ों का उल्लेख प्रयोग होता है। राजा जयवर्मा सप्तम के हतप्रोहे अभिलेख में चीनांशुक का भी उल्लेख आया है। चीनांशुकमया पंच तत्वारि संत पटा अपि, जिससे सूचित होता है कि कंबुज देश में चीनी रेशम को भी वस्त्रों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। आभूषण पहनने का रिवाज बहुत अधिक था। पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अनेक विध आभूषण पहना करते थे। राजा श्री उदयादित्य वर्मदेव का गुरु जयेंद्र पंडित था, जिसने अपने यजमान के लिए अनेक यज्ञों का अनुष्ठान कराया था। दक्षिणा में जो बहुमूल्य पदार्थ राजा की ओर से जैनेन्द्र पंडित को प्रदान किए गए थे, उनमें मुकुट, कुंडल, केयूर, कटक, कड़े आदि आभूषण भी थे। कंबुज के अभिलेखों से भी वहां के लोगों के भोजन के संबंध में कतिपय संकेत मिलते हैं। राजा जयवर्मा सप्तम के तप्रोहात अभिलेख में उन भोज्य पदार्थों का परिगणन किया गया है जो कि अध्यापकों और विद्यार्थियों के निर्वाहार सत्रों में प्रदान किए जाते थे। ये भोज्य पदार्थ तंडुल, चावल, तिल, मुदुग, मूंग, धृत, क्षीर, दूध, दधि, दही, तेल, मधु, कुदुब, कोदो, ब्रीही आदि थे। अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के सत्रों भोजन भंडारों के लिए इन पदार्थों की कितनी कितनी मात्रा किस किस अवसर पर प्रदान की जाए, तप्रोहन के अभिलेख में यह अत्यंत विशद रूप से लिखा गया है। अन्य भी अनेक अभिलेखों में इन्हें भोज पदार्थों के नाम आए हैं, जिससे कंबुज के लोगों के भोजन के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कंबुज के निवासियों का मुख्य भोजन चावल था। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आश्रमों मठों में प्राणियों की हत्या व मांस भोजन निषिद्ध थे, पर गृहस्थ लोग विशेषतया क्षत्रिय वर्ग के व्यक्ति मांस का भी भोजन के लिए प्रयोग करते थे। यह चीनी विवरणों से ज्ञात होता है। यद्यपि कंबुज देश के परिवार प्रधानतः पितृसत्ताक थे, पर अभिलेखों द्वारा कतिपय मातृसत्ताक कुलों की सत्ता के भी संकेत मिलते हैं। कुछ अभिलेखों में माता से भी वंशावलियां दी गई हैं। मातृसत्ताक कुलों की सत्ता संभवतः दक्षिणी भारत के प्रभाव के कारण थी, क्योंकि उसके साथ भी कंबुज देश का घनिष्ठ संपर्क था। कंबुज देश के जीवन में गान, वादन और नृत्य का महत्वपूर्ण स्थान था। इन कलाओं के प्रदर्शन के प्रधान स्थान मंदिर थे, जिनमें गान, नृत्य आदि के लिए राजाओं तथा अन्य संपन्न व्यक्तियों द्वारा इन कलाओं में प्रवीण स्त्री पुरुषों के भी प्रदान किए जाने की प्रथा थी। राजा इंद्रवर्मा के प्रह को अभिलेखों में पहले राजा द्वारा प्रतिष्ठापित शिव तथा देवी की मूर्तियों का उल्लेख है, और फिर उन पदार्थों का आदि का जिन्हें की राजा ने दान दक्षिणा के रूप में इनके लिए प्रदान किया था। दान दक्षिणा का विवरण देते हुए नर्तकी आदि का इस रूप में उल्लेख किया गया है। नर्तक के शोभना बहोव्य गायंतो वादिकास्त तथा वीणादि विदाद दिंदरी वेणु ताल विशारद पुरुषारूपणी शल्य खाया नर्तनादि विशरदा बहवचारुवेशाच सभुष न परिच्छदा। गायिकाएं, नर्तकियां, वीणा आदि वाद्यों को बजाने वाली तथा वेणु ताल विशारद वादिकाएं नृत्य में कुशल, सुंदर तथा शोभनवेश वाले एवं भूषणों से विभूषित पुरुष द्वारा राजा द्वारा शिव और देवी के मंदिरों के लिए प्रदान किए गए थे। राजा जयवर्मा पंचम के एक अभिलेख में वीणा, वेणु, मृदंग, घंटा, भेरी, शंख, पटह आदि कितने ही वादों के नाम दिए गए हैं। नाटक लिखने और खेलने का रिवाज भी कंबुज देश में था। राजा जयवर्मा सप्तम की रानी जयराज देवी के एक नाटक लिखा था, जिसका विषय जातक कथाओं से लिया गया था। इस नाटक को खेलने के लिए बौद्ध भिक्षुणियों को पात्र के रूप में प्रयुक्त किया गया था। राजा जयवर्मा पंचम का गुरु यज्ञवराह था, जो पातंजल्य व्याकरण, वैशेषिक दर्शन, सांख्य शास्त्र, वैदक ज्योतिष आदि में प्रवीण होने के साथ साथ आख्यायिकाओं तथा नाटकों का लेखक भी था। वह नाटक खिलवाने में कुशल था। आख्यायकृत रिभूत स्वदेशे यदुपक्रमम नाना भाषा लिपिकश्च प्रयोक्ता नाटक कश्य। कंबुज देश में अनेक उत्सव भी सामूहिक रूप से मनाए जाते थे, जिनमें नर्तक तथा नर्तकियां अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। ऐसा एक उत्सव बसंतोत्सव था, जिसका उल्लेख जयवर्मा सप्तम के तह प्रोहे अभिलेख में है। वहां लिखा है, चैत्राष्टमयाम समारभ्य यावतत् पूर्णिमा तिथि सुवसंतो तव विधा वंशराम जिन्नागमे नर्तक्यो नर्तकाश्चात्र नृत्य येहु परितोदिश दानशीलादिकुशलम कुर्य शर्षवे च मानव। इससे सूचित होता है कि बसंतोत्सव चैत्र की अष्टमी से शुरू करके चैत्र पूर्णिमा तक 7 या 8 दिन मनाया जाता था, और उसमें नर्तकियां और नर्तक सब दिशाओं में नृत्य किया करते थे। जयवर्मा सप्तम के ही एक अन्य अभिलेख प्रखंड शिलालेख में एक उत्सव का वर्णन है, जो प्रतिवर्ष फागुन मास में प्रखंड के मंदिर में मनाया जाता था। शिवरात्रि के अवसर पर भी उत्सव मनाने का उल्लेख है। एक अभिलेख में विद्यमान है, नृत्य, गान, नाटक और सामूहिक उत्सवों के अतिरिक्त कंबुज देश में मनोरंजन का एक साधन मुष्टियुद्ध भी था, जिसके संबंध में राजा राजेंद्र वर्मा के कोक समारोह अभिलेख के उस भाग में उल्लेख है, जो कि खमेर भाषा में है। मुष्टियुद्ध में जो व्यक्ति विजयी हुआ था, उसे एक भूखंड पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया था। मुष्टियुद्ध वर्तमान समय के बॉक्सिंग के समान ही होता होगा।